एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार।
आज हम एक ऐसी दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो हमारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते। हम बात कर रहे हैं कोशिका की, सेल की, जीवन की सबसे छोटी लेकिन शायद सबसे हैरत अंगेज इकाई।
बिल्कुल।
और इस सफर में हमारे गाइड होंगे टेरेंस एलन और ग्रहम काउलिंग। उनकी किताब है द सेल, और हम आज उसी की जरूरी विचारों को समझने की कोशिश करेंगे। ये किताब आप समझिए एक माइक्रोस्कोप की तरह है जो हमें कोशिका के अंदर की वो हलचल भरी दुनिया दिखाती है।
लेकिन ये कोशिकाएं मतलब सेल, इसके बारे में जानना आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? देखिए ना, चाहे हमारी सेहत हो या फिर कैंसर जैसी बीमारियां,
हाँ,
नई मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसे आजकल ये mRNA टीके चल रहे हैं,
बिल्कुल,
या फिर ये समझना कि भाई जीवन आखिर है क्या,
हाँ,
इन सब के तार मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी कोशिका से जुड़े हैं। सही कहा आपने, ये वो जगह है जहाँ केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी सब आकर मिलते हैं, और ये किताब हमें इसी संगम को समझने में मदद करती है। ये ज्ञान हमें गहराई से जानकारी देगा, और वो भी कम समय में। हमारे श्रोता यही तो चाहते हैं, काम की बात जल्दी।
तो चलिए पहले उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने हमें ये नज़ारा दिया है, टेरेंस एलन और ग्रहम काउलिंग। ये दोनों ही कोशिका जीव विज्ञान, जिसे सेल बायोलॉजी कहते हैं, उसके जाने माने नाम हैं। टेरेंस एलन की बात करें तो वो तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के जादूगर हैं।
हाँ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी मतलब वो तकनीक जो हमें कोशिका के अंदर के छोटे से छोटे हिस्से को 3D में देखने की ताकत देती है। एलन साहब की खास दिलचस्पी रही है कोशिका के कंट्रोल रूम यानी नाभिक, न्यूक्लियस में,
अच्छा,
और उसमें मौजूद गुणसूत्रों, क्रोमोसोम्स को समझने में। वो सिर्फ बताते नहीं, वो दिखाते हैं कि अंदर दिखता कैसा है, चल क्या रहा है।
अरे वाह, तो वो एक तरह से कोशिका के चीफ आर्किटेक्ट हो गए जो उसका पूरा नक्शा तैयार करते हैं। और ग्रहम काउलिंग, उनका क्या रोल है इसमें?
ग्रहम काउलिंग जो है वो कोशिका के अंदर जो काम चलता है ना, मतलब उसका सिस्टम, उसे समझने में माहिर हैं। जीन कैसे काम करते हैं, कोशिका कैसे बढ़ती है, कैसे कंट्रोल में रहती है, ये सब उनकी स्पेशलिटी है। और सुनने में आया है कि वो मैनचेस्टर के बहुत मशहूर पैटरसन इंस्टीट्यूट फॉर कैंसर रिसर्च से भी जुड़े रहे हैं।
कमाल है, तो एक ने ढांचा दिखाया और दूसरे ने समझाया कि वो ढांचा काम कैसे करता है। जैसे जैसे एक ने शहर का नक्शा बना दिया,
हाँ,
और दूसरे ने बताया कि शहर की ट्रैफिक पुलिस कैसे काम करती है, बिजली घर कैसे चलता है, फैक्ट्रियां कैसे काम करती हैं। और ये सब सिर्फ किताबी बातें नहीं है, लैब में की गई रिसर्च पर आधारित है, खासकर कैंसर जैसी बीमारियों के संदर्भ में।
बिल्कुल। और उनकी सबसे अच्छी बात क्या है पता है, वो इस जटिल विषय को बहुत आसान बना देते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि जो लोग सीधे विज्ञान से नहीं जुड़े हैं वो भी कोशिका की इस हैरान करने वाली दुनिया को समझ सकें।
चलिए अब आते हैं असल मुद्दे पर। ये किताब द सेल, आखिर ये है क्या चीज? जैसा हमने सुना, ये कोशिका की दुनिया का एक गाइडेड टूर है ना? सेल बायोलॉजी का एक ऐसा परिचय जो सबके लिए है।
हाँ, ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, हर उस इंसान के लिए है जो ये जानना चाहता है कि जिंदगी मतलब आखिर चलती कैसे है। किताब का सबसे बड़ा आइडिया ये है कि कोशिका कोई बेजान ईंट नहीं है जिससे शरीर बन गया।
अच्छा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है, एक छोटा सा हलचल भरा शहर। किताब हमें वो बोरिंग डायग्राम से निकालकर कोशिका को एक जीती जागती चीज की तरह दिखाती है।
ये हमें सबसे पहले कोशिका की खोज की कहानी बताती है, फिर उसकी बाहरी दीवार यानी वो जो कोशिका झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां ले जाती है, फिर अंदर शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर यानी साइटोस्केलेटन उसको दिखाती है, और फिर आते हैं शहर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनेल, जैसे बिजली घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया,
हाँ, पावर हाउस,
चीजें बनाने वाली फैक्ट्रियां, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पोस्ट ऑफिस, गोल्जी तंत्र, और यहां तक कि शहर का कूड़ा कचरा निपटाने वाला रिसाइक्लिंग प्लांट भी,
लाइसोजोम, हाँ।
और ये टूर हमें शहर के कमिश्नर ऑफिस यानी नाभिक, न्यूक्लियस तक ले जाता है, जहां शहर का सारा प्लान मतलब हमारा DNA रखा है। किताब ये भी बताती है कि ये शहर अपनी आबादी कैसे बढ़ाता है, कोशिका विभाजन से।
अच्छा।
शहर के लोग यानी कोशिकाएं आपस में बात कैसे करते हैं, और मिलकर बड़े मोहल्ले यानी ऊतक या टिश्यू कैसे बनाते हैं, और हाँ ये भी कि जब शहर का सिस्टम गड़बड़ाता है तो कैंसर जैसी दिक्कतें कैसे शुरू होती हैं। ये शहर वाली मिसाल तो कमाल की है, मुझे लगता है इसे चीजें समझना वाकई आसान हो जाएंगी। तो चलिए अब इस शहर के अंदर थोड़ा और घूमते हैं। कहानी शुरू होती है खोज से। रॉबर्ट हुक ने 1665 में,
हाँ 1665,
कॉर्क में पहली बार वो छोटे खाने देखे जिन्हें उन्होंने सेल कहा। फिर आए ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से पहली बार जिंदा अकेले तैरते जीवों को देखा।
एनिमलक्यूल्स कहा था उन्होंने, यहीं से सेल थ्योरी की नींव पड़ी। श्लाइडन, श्वान, विर्चो जैसे वैज्ञानिकों ने तीन बड़ी बातें बताई। पहली, हर जीवित चीज कोशिकाओं से बनी है।
ठीक।
दूसरी, कोशिका ही जीवन की सबसे छोटी इकाई है जो अपने आप में जिंदा है। और तीसरी, हर नई कोशिका पहले से मौजूद कोशिका से ही पैदा होती है, कहीं और से नहीं आती।
अच्छा।
और यही हमें पता चलता है कि कोशिकाएं भी दो तरह की है, एक साधारण वाली प्रोकैरियोटिक जैसे बैक्टीरिया, और दूसरी थोड़ी जटिल जिनमें असली कंट्रोल रूम यानी नाभिक होता है, यूकैरियोटिक जैसे हमारी अपनी कोशिकाएं।
ठीक है, तो अब कोशिका की दीवार यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। किताब कहती है ये कोई पत्थर की दीवार नहीं है,
नहीं
बल्कि एक लचीली स्मार्ट बाड़ की तरह है। ये तय करती है कि शहर में कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा। ये फॉस्फोलिपिड नाम के फैट और प्रोटीन से बनी है, और ये प्रोटीन ये गेट, पंप या सेंसर की तरह काम करते हैं, वाकई एक स्मार्ट गेट कीपर।
बिल्कुल, और इस बाड़ के अंदर है शहर का पूरा माहौल, साइटोप्लाज्म। इसमें एक जेली जैसा तरल है, साइटोसोल, और साथ में शहर का ढांचा यानी साइटोस्केलेटन। ये प्रोटीन के धागों का एक जाल है जो शहर को आकार देता है, इमारतों यानी ऑर्गेनेल को जगह पर टिकाए रखता है, और अंदर सामान लाने ले जाने के लिए सड़कें भी बनाता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम की तरह। यहां एक बहुत जरूरी बात समझ आती है, जैसा ढांचा वैसा काम, स्ट्रक्चर ही फंक्शन तय करता है।
अब आते हैं शहर के सबसे जरूरी विभागों पर, ऑर्गेनेल्स। सबसे पहले बिजली घर, माइटोकॉन्ड्रिया। ये खाने और ऑक्सीजन से एटीपी बनाते हैं, यानी कोशिका की एनर्जी करेंसी। इसी से सारे काम होते हैं।
दिलचस्प बात यह है कि इनका अपना खुद का डीएनए भी होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये शायद अरबों साल पहले आजाद बैक्टीरिया थे जो बड़ी कोशिकाओं के अंदर रहने लगे। है ना कमाल की बात?
सच में, अरे वाह, ये तो बिल्कुल अलग कहानी है। अच्छा, फिर कौन सा डिपार्टमेंट है?
फिर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में ईआर। ये शहर की मेन फैक्ट्री है। इसका एक हिस्सा है रफ ईआर, जिस पर राइबोसोम नाम की छोटी मशीनें चिपकी होती है, वो प्रोटीन बनाता है।
राइबोसोम?
हाँ, छोटी छोटी प्रोटीन बनाने वाली मशीनें। और ईआर का दूसरा हिस्सा है स्मूथ ईआर, वो फैट बनाता है और शहर की सफाई मतलब डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद करता है। ये राइबोसोम या तो ईआर से जुड़े होते हैं या फिर साइटोप्लाज्म में अकेले घूमते रहते हैं।
अच्छा, तो ईआर और राइबोसोम ने माल बना दिया, अब उसका क्या होता है?
वो जाता है गोल्जी तंत्र में, आप कह सकते हैं शहर का पोस्ट ऑफिस और पैकेजिंग सेंटर। यहाँ प्रोटीन और फैट की फाइनल फिनिशिंग होती है, उन्हें छाटा जाता है, पैक किया जाता है और फिर उनकी सही मंजिल पर भेज दिया जाता है, चाहे वो कोशिका के अंदर कहीं जाना हो या कोशिका से बाहर। कितना सिस्टमैटिक काम है,
वाकई पूरा मैनेजमेंट है अंदर।
बिल्कुल। और आखिर में लाइसोसोम, शहर का रिसाइकलिंग और डिस्पोजल डिपार्टमेंट। इनमें बड़े तेज पाचक एंजाइम होते हैं जो टूटे फूटे हिस्सों, बेकार चीजों और बाहर से आए दुश्मनों जैसे बैक्टीरिया को गलाकर खत्म कर देते हैं। वाकई ये शहर वाली मिसाल इन सब कामों को याद रखने में बहुत मदद करती है। हर डिपार्टमेंट का अपना खास काम है और सब मिलकर शहर को चला रहे हैं।
अब चलते हैं शहर के सबसे अहम हिस्से, कंट्रोल रूम यानी नाभिक, न्यूक्लियस की तरफ। ये एक डबल दीवार से घिरा है जिसमें छोटे छोटे गेट हैं, न्यूक्लियर पोर्स। ये कंट्रोल करते हैं कि कौन अंदर बाहर आ जा सकता है।
और अंदर अंदर है क्रोमैटिन, डीएनए और प्रोटीन का गुंथा हुआ जाल। इसी में हमारी पूरी जिंदगी का ब्लूप्रिंट लिखा है, बहुत ही करीने से पैक किया हुआ।
तो इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल कैसे होता है, मतलब काम कैसे करता है?
यही आती है जीन अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, जीन एक्सप्रेशन। आसान भाषा में समझें तो इसके दो मुख्य कदम हैं। पहला है ट्रांसक्रिप्शन। ये नाभिक के अंदर होता है, इसमें डीएनए के एक जरूरी हिस्से यानी जीन की एक तरह से फोटोकॉपी बनाई जाती है। इस कॉपी को कहते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए।
मैसेंजर आरएनए, ठीक है। फिर
दूसरा कदम है ट्रांसलेशन। ये एमआरएनए कॉपी कंट्रोल रूम से बाहर फैक्ट्री यानी राइबोसोम के पास जाती है। राइबोसोम इस कॉपी पर लिखे कोड को पढ़ता है और उसके हिसाब से अमीनो एसिड को जोड़कर एक खास प्रोटीन बना देता है।
अच्छा,
और यही प्रोटीन असल में कोशिका के सारे काम करते हैं। सोचिए जरा, डीएनए के सिर्फ चार अक्षरों ए टी सी जीस के कोड से इतनी तरह के इतने अलग अलग प्रोटीन कैसे बन जाते हैं।
ये तो कमाल है, मतलब जानकारी डीएनए से काम प्रोटीन में बदलाव।
बिल्कुल। इसके बाद किताब बताती है कि कोशिकाएं अपनी आबादी कैसे बढ़ाती हैं, कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल और विभाजन जिसे माइटोसिस कहते हैं, ये एक बहुत ही कंट्रोल्ड प्रोसेस है। कोशिका पहले बढ़ती है, अपने डीएनए की एकदम सकी कॉपी बनाती है और फिर बिल्कुल दो बराबर हिस्सों में बट जाती है।
माइटोसिस, मैंने स्कूल में पढ़ा था इसके बारे में, वो क्रोमोसोम का डांस जैसा कुछ होता है ना?
हाँ, कह सकते हैं। क्रोमोसोम पहले तैयार होते हैं, फिर बीच में लाइन लगाते हैं, फिर आधे आधे होकर अलग अलग कोनों में जाते हैं और आखिर में दो नई कोशिकाएं बन जाती हैं और दोनों में बिल्कुल वही जेनेटिक जानकारी होती है जो पहली वाली में थी।
लेकिन सब ऐसी अपने आप तो नहीं होता होगा, कोई कंट्रोल तो होगा।
बहुत जरूरी सवाल। इस पूरी प्रक्रिया में कई चेक पॉइंट्स होते हैं, ये मॉलिक्यूलर गार्ड्स की तरह है जो हर कदम पर देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है या नहीं। अगर कहीं कोई गड़बड़ होती है तो प्रोसेस वहीं रुक जाता है।
अच्छा, सेफ्टी गार्ड्स है मतलब।
हाँ, और यही कैंसर की कहानी शुरू होती है। कैंसर तब होता है जब कोशिकाएं इन चेक पॉइंट्स की सुनना बंद कर देती हैं और बिना रुके बिना कंट्रोल के बढ़ती चली जाती हैं।
ओहो, तो ये है असली जड़। अच्छा, कोशिकाएं अकेली तो नहीं रहती, हम जैसे जीवों में तो खरबों होती हैं।
बिल्कुल, बहुकोशिकीय जीवों में वे मिलकर टीम बनाती हैं ऊतक यानी टिश्यूज। एक ही तरह की शुरुआती कोशिका से सैकड़ों अलग अलग तरह की कोशिकाएं बनती हैं, जैसे दिमाग की कोशिका, न्यूरॉन या मांसपेशी की कोशिका। इसे कहते हैं कोशिका विभेदन, सेल डिफरेंशिएशन,
स्पेशलाइजेशन हो जाता है।
और ये सब अलग अलग कोशिकाएं आपस में बात भी करती होंगी।
हाँ बिल्कुल, इसे कहते हैं सेल सिग्नलिंग, जैसे हार्मोन्स भेजकर एक दूसरे को संदेश देना। इसी तालमेल से पूरा शरीर एक यूनिट की तरह काम करता है, सब जुड़े हुए हैं।
और आखिर में किताब उस पहलू पर आती है जब ये पूरा सिस्टम, ये व्यवस्था फेल हो जाती है। हाँ, जब चीजें गलत रास्ते पे चली जाती, कैंसर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये तब होता है जब कोशिका के अंदर के नियम टूट जाते हैं। कैंसर कोशिकाएं बढ़ना बंद करने के सिग्नल को नज़रअंदाज करती हैं।
अच्छा,
वे मरने से इनकार कर देती हैं, मतलब एपोप्टोसिस से बच निकलती हैं। वो अपनी खून की सप्लाई खुद बना लेती हैं, जिसे एंजियोजेनेसिस कहते हैं। और सबसे खतरनाक, वो शरीर में कहीं और जाकर फैल सकती हैं, जिसे मेटास्टेसिस कहते हैं।
बाप रे।
ये समझना बहुत जरूरी है कि कैंसर कोई बाहर से आया दुश्मन नहीं है, ये हमारे अपने शरीर की कोशिकाओं की ही बगावत है, एक तरह का गृह युद्ध। इसीलिए सामान्य कोशिका कैसे काम करती है ये जानना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है।
तो इस पूरी बातचीत से, इस किताब से कुछ खास बातें निकल कर आती हैं, कुछ बड़े आइडियाज।
हाँ,
पहला तो यही कि कोशिका एक छोटे शहर की तरह है। ये मिसाल वाकई बहुत पावरफुल है, मुश्किल चीजें भी आसानी से समझ आ जाती हैं।
हाँ, ये एनालॉजी बहुत काम की है। दूसरी बड़ी बात, जैसा ढांचा वैसा काम, स्ट्रक्चर ही फंक्शन तय करता है। हर चीज का डिजाइन, उसका आकार उसके काम के लिए एकदम परफेक्ट है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी झिल्ली मुड़ी हुई होती है ताकि ज्यादा सतह मिले, ज्यादा एनर्जी बन सके। या हमारी खून की लाल कोशिकाएं, वो चपटी डिस्क जैसी होती है ताकि तंग नसों से भी निकल सके और ज्यादा ऑक्सीजन पकड़ सके। बनावट और काम का ये रिश्ता हर जगह दिखता है।
तीसरा, जानकारी ही जीवन है, इन्फॉर्मेशन एज करेंसी ऑफ लाइफ। डीएनए में लिखी जानकारी से आरएनए बनता है, फिर प्रोटीन, और यही प्रोटीन सबको चलाते हैं। और सबसे मजेदार बात यह है कि बैक्टीरिया से लेकर हाथी तक, हम सब एक ही जेनेटिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये जिंदगी का यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है ना?
बिल्कुल यूनिवर्सल। चौथी थीम है लगातार चलती व्यवस्था और संतुलन, डायनामिक ऑर्डर और होम्योस्टेसिस। कोशिका कभी शांत नहीं बैठती, हर पल कुछ ना कुछ चलता रहता है, लेकिन इस हलचल के बीच भी वो अपने अंदर का माहौल, अपना तापमान, पीएच वगैरह स्थिर बनाए रखती है और जरूरत पड़ने पर बदलती भी है, ढलती भी है, अडैप्ट करती है।
और पांचवी बात जो शायद हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है, व्यवस्था बनाम अव्यवस्था, ऑर्डर वर्सेस क्योस, यानी सेहत बनाम बीमारी। जब तक कोशिकाएं कायदे कानून मानती हैं, हम स्वस्थ हैं।
सही।
जैसे ही नियम टूटते हैं, कैंसर जैसी बीमारियां सिर उठा लेती हैं। ये बात सेल बायोलॉजी को सीधे हमारी जिंदगी से, हमारी सेहत से जोड़ देती है।
हाँ, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है।
किताब में कुछ लाइनें वाकई सोचने पर मजबूर करती हैं, जैसे ये कहना कि कोशिका के अंदर झांकना एक ऐसे शहर को देखने जैसा है जो जटिल और हलचल भरा है। इस शहर को समझना ही जीवन के आधार को समझना है। ये कोशिका को सिर्फ एक बायोलॉजिकल पुर्जा नहीं, बल्कि एक जीती जागती दुनिया की तरह दिखाता है।
और डीएनए के बारे में ये विचार कितना गहरा है। जीवन का रहस्य एक सरल 4 अक्षरों वाले कोड में लिखा है। यह सोचना अद्भुत है कि सिर्फ ए, टी, सी और जी से एक बैक्टीरिया से लेकर ब्लू व्हेल तक सब कुछ बनाने के निर्देश कैसे बन सकते हैं। वाकई इतनी सी चीज में इतनी बड़ी ताकत।
कोशिका झिल्ली के लिए भी एक अच्छी लाइन है, ये सिर्फ एक दीवार नहीं है, ये जीवन और निर्जीव के बीच की रेखा है, एक स्मार्ट गेटकीपर जो बाहरी दुनिया के साथ लगातार मोल भाव करता है। ये बताता है कि जिंदगी के लिए कंट्रोल और बचाव, ये दोनों कितने जरूरी हैं।
और कैंसर पे ये बात बहुत असरदार है, बहुत पावरफुल है। कैंसर बाहर से आया कोई राक्षस नहीं है, यह स्वयं कोशिका की त्रासदी है। यह एक गृह युद्ध है। कैंसर से लड़ने के लिए हमें पहले सेल्युलर कानून और व्यवस्था में विशेषज्ञ बनना होगा। ये साफ करता है कि सामान्य कोशिका को समझना क्यों जरूरी है अगर हमें बीमारियों से लड़ना है।
तो सवाल उठता है कि ये सारी जानकारी, ये ज्ञान हमारे किस काम का है, रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है। मेरे ख्याल से सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम अपनी सेहत और बीमारियों को थोड़ा बेहतर समझ सकते हैं। जैसे अब कोई वायरस इन्फेक्शन होता है तो हम शायद सोच सकते हैं कि कैसे वो वायरस हमारी कोशिका की मशीनरी को हाईजैक कर रहा होगा। या कीमोथेरेपी, हमें पता होता है कि वो तेजी से बढ़ने वाली कैंसर कोशिकाओं पर असर करती है। या ये जो नई mRNA वैक्सीन्स आई हैं, अब समझ आता है कि वो कैसे हमारी कोशिकाओं को ही टीचर बना देती हैं कि दुश्मन को कैसे पहचानना है।
बिल्कुल। और खाने पीने और लाइफस्टाइल की बातें भी ज्यादा समझ आने लगती हैं, है ना। जब पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं, तो विटामिन बी क्यों जरूरी है या कसरत क्यों करनी चाहिए, ये रटने की बात नहीं रहती, इसके पीछे का लॉजिक समझ आता है।
सही कहा।
या एंटीऑक्सीडेंट्स क्यों खाएं, क्योंकि वो हमारी कोशिका की दीवारों को, हमारे डीएनए को नुकसान से बचाते हैं। ये ज्ञान हमें ज्यादा जागरूक बनाता है अपने चुनाव को लेकर।
और आजकल जो नई तकनीकें आ रही हैं, स्टेम सेल थेरेपी, जीन एडिटिंग, क्रिस्पर वगैरह, उनके बारे में भी हम थोड़ा बेहतर समझ पाते हैं। अखबारों में पढ़ते हैं तो एकदम अनजान नहीं लगता, पता होता है कि ये सब कोशिका के लेवल पे काम कर रहा है। ये सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल समझ है।
और थोड़ा दार्शनिक स्तर पर सोचें तो ये जानना कि हम असल में कोई 37 खरब, शायद उससे भी ज्यादा, कोशिकाओं की एक चलती फिरती कॉलोनी है जो सब मिलजुल कर काम कर रहे हैं, ये एहसास ही कितना अजीब और अद्भुत है।
हाँ, ये तो है।
इससे अपने शरीर की ताकत और उसके ठीक होने की क्षमता पर, उसके लचीलेपन पर यकीन बढ़ता है। हम सिर्फ मैं नहीं, हम हैं खरबों का एक समुदाय।
आज की इस बातचीत से मेरे लिए सबसे बड़ा टेक अवे या सीख ये है कि जिंदगी को सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं, बल्कि इस बारीक, ना दिखने वाले लेकिन हमेशा चलते रहने वाले सेलुलर लेवल पर देखना कितना जरूरी और दिलचस्प है। इतनी जटिलता, इतना ऑर्गेनाइजेशन जो मैं नजर भी नहीं आता, सच में दिमाग घूम जाता है।
और मेरे लिए वो शहर वाली मिसाल दिमाग में एकदम बैठ गई है। इतनी सारी मुश्किल चीजों को याद रखने का कितना आसान और मजेदार तरीका है। और ये बात भी बिल्कुल साफ हो गई कि कोशिका को समझना ही सेहत को समझना है। ये ज्ञान हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि शायद अपनी सेहत के लिए थोड़ा और जिम्मेदार भी बनाता है। क्या पता इस जानकारी के बाद हम अपने अंदर के इन खरबों नागरिकों का थोड़ा बेहतर ख्याल रखना सीख जाएं।
बिल्कुल। कोशिका की ये दुनिया जितनी छोटी दिखती है, उतनी ही बड़ी और अहम है हमारे लिए। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।